नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। अमरीका की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने से रोकने का प्रस्ताव पारित किया। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से मृतकों की संख्या बढ़कर 601 हुई। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में, और भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। वो इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 25 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधि मंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद नजदीक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में लागू हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा भी हुई है। रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग तथा कई व्यापक परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकना है। यह प्रस्ताव 208 मतों से पारित हुआ। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सांसदों का साथ दिया। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि प्रस्ताव को अभी रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। यदि सीनेट इसे मंजूरी भी देती है, तब भी राष्ट्रपति ट्रंप इसे वीटो कर सकते हैं। इस बीच डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई से जुड़े फैसलों में कांग्रेस की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसराइल और लेबनान में संघर्ष विराम को फिर से लागू करने तथा लेबनान के अंदर कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जहां हिजबुल्ला लड़ाकों की मौजूदगी नहीं होगी। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई चौथे दौर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि संघर्ष विराम तभी प्रभावी रहेगा जब हिजबुल्ला पूरी तरह से गोलीबारी बंद करे और लितानी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों से अपने सभी लड़ाकों को हटाए। समझौते के अनुसार इन क्षेत्रों की सुरक्षा और नियंत्रण की जिम्मेदारी लेबनान की सेना संभालेगी। दोनों पक्षों ने कहा है कि ये कदम व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार खसरे से मृतकों की संख्या बढ़कर 601 हो गई है। इन मौतों की पुष्टि खसरे से हुई है, जबकि 511 मौतों को संदिग्ध खसरा मामलों के रूप में दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला बीमारी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और इसे रोकने के प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेसिस ने बीमारी पर काबू पाने के लिए और तेज कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इबोला वायरस अब उत्तर और दक्षिण कीवू प्रांतों के साथ साथ पड़ोसी देश युगांडा तक पहुंच चुका है। मई के मध्य से अब तक 344 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना है। इन देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वे 1 जनवरी 2027 से परिषद में अपना कार्यभार संभालेंगे और 31 दिसंबर 2028 तक सदस्य बने रहेंगे। नवनिर्वाचित देश डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नासा ने मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे अपने मेवेन अंतरिक्ष यान के मिशन के समाप्त होने की घोषणा की है। लगभग 6 महीने तक कोई संपर्क न होने के बाद नासा ने पुष्टि की कि 1 दशक से अधिक समय तक चले इस मिशन का अंत हो गया है। वर्ष 2013 में प्रक्षेपित मेवेन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना था। पिछले वर्ष दिसंबर में मंगल ग्रह के पीछे जाने के बाद यान से संपर्क टूट गया था। श्रीलंका के अगुरुथावोटा के बटाकोटा स्थित एक वृद्धाश्रम में आग लगने से 8 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। घायल हुए 8 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वृद्धाश्रम से 51 निवासियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना की जांच जारी है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करना है।
इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार की विजेता भारतीय टीम फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से खेलेगी। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने से रोकने का प्रस्ताव पारित किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में और भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।